الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں. اتنی بے پناہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں جو جوش میں ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ رحمت پکار رہی ہے، اے گناہگارو اپنی بخشش کروا لو. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے در کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں، جنت سج رہی ہے، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں روزے داروں کی بخشش کے لیے. نیکیوں کے خزانے کھول دیے گئے، شیاطین کو قید کر دیا گیا. کتنی تیاریاں ہوئی ہیں اس کے لیے، اس وقت کے لیے آسمانوں پر، کتنی گہما گہمی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم سے خلاصی پا لیں. وہ ہر رات بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. لہذا اس مہینے کو ایسے ہی گزارنا اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہتا ہے، کیا میں بھی اپنی بخشش چاہتی ہوں. حبیب العدوی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے مکان کی چھت پہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اتنی پیاری باتیں ہیں. اے اللہ، تارے نکل آئے ہیں، سب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مگر اے اللہ تیرا در کھلا ہوا. ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ ہے، اور میں یہاں کھڑا ہوں تیرے آگے. اے اللہ، تو اللہ سے باتیں کرنے کے دن ہیں. وہ وقت جو 11 مہینے غفلت میں گزرا، اس کو کمپنسیٹ کرنے کا مہینہ آ گیا. یہ دن وہ ہیں جن میں ہم لو لگائیں اللہ کے ساتھ، کسی صورت میں بھی، چاہے ذکر کر کے، چاہے دعائیں کر کے، چاہے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، چاہے قرآن کو سن کے، چاہے دورہ سن کے، چاہے نوافل پڑھ کے، مگر کسی نہ کسی طرح ہر کوئی جس کی جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، جیسے جس کے حالات ہیں، ہر حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کر سکتا ہے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ میری تو یہ مجبوری ہے، نہیں میری تو جاب ہے، میرے تو بچے چھوٹے ہیں، میرے تو فلاں ہیں، میں تو مثلا پریگننٹ ہوں، میں تو دودھ پلانے والی ہوں، میں تو بیمار ہوں، میں تو بوڑھی ہوں. نہیں، ہر ایک دیکھے اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں آپ گھنٹوں قیام میں ہی کھڑے رہیں گے تو رابطہ ہوگا. اگر آپ کی ایسی مجبوری ہے، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ دعائیں کر لیں، آپ ذکر کر لیں، آپ قرآن پاک کو سن لیجئے. کوئی بیڈ ریڈن بھی ہے، وہ بھی سن تو سکتا ہے. لہٰذا کوئی بھی کسی قسم کا عذر دے کے اپنے آپ کو سیٹسفائی نہ کرے کہ ہاں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی لہٰذا باقی چیزوں سے بھی فارغ ہوں. نہیں، آپ جس بھی حالات میں کہیں کہ ان حالات میں میں کیا کر سکتی ہوں، سوچئے اس بات کو. تو ان قیمتی دنوں کو سوچ سمجھ کے گزارنا ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹی کے دروازے کھولے ہیں ہر ایک کے لیے. تو سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج ہم جس دل کی بیماری کی بات کرنے والے ہیں، بہت ہی ہڈن ہے، اور وہ ہے بدگمانی. جب انسان کسی سے بدگمان ہوتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں بدظن ہونا، تو تب جو بات بھی دوسرے کے بارے میں نکلتی ہے، اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، تان ہوتا ہے، دوسرے کی برائی ہوتی ہے. پھر کبھی بھی آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ پیش آ ہی نہیں سکتے، چاہے ویسے سامنے منہ پہ ہنس ہنس کے بھی باتیں کرتے رہیں، مگر وہ جو بدگمانی دل میں ہوتی ہے نا، وہ انسان کو کبھی دوسرے کی خیر خواہی پہ آمادہ نہیں کرتی. یا تو سامنے کڑوی باتیں کرے گا، تانے دے گا، یا پیٹ پیچھے باتیں کرے گا. تو اکثر دیکھا گیا کہ ہم ذرا ذرا سی بات پہ خود ہی کچھ ایزیوم کر لیتے ہیں، कि फलां तो जरूर मेरे खिलाफ ही है, फलां ने मुझे ये बात कर दी थी ना, देखा, उसके बाद बस बदगुमानी पाल ली, और वो बदगुमानी ही नहीं दिल से जा रही, फलां मुझे देख के मुंह बना देती है, फलां ने मेरा टेक्स्ट का देखो पढ़ा भी था, देखा जवाब नहीं दिया ना, उससे बात ही नहीं करना चाहती। अब मैंने फलां को फोन किया था, उसने फोन का जवाब ही नहीं दिया, फोन ही नहीं उठाया, उसको मेरी क्या परवाह, और फलां वो तो मेरे खिलाफ ही है, मुझे अच्छा नहीं समझती, और फलां ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, तो लिहाजा बदगुमानी पाली। तो ये इल फीलिंग्स पालना दूसरे के बारे में एजम्पशंस की बेसिस पे, ये बदगुमानी होती। अब खुद सोचे हम अपने आप को कितने एक्सक्यूजेस देते हैं ना, कोई चीज़ हमसे गलत हो जाए तो हम इतनी मजबूरियों की लिस्ट बताते हैं, बहुत सारी उजर हमारे पास मौजूद होते हैं, मगर कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते कि पता नहीं उसकी क्या मजबूरी होगी, पता नहीं उसका दिन आज कैसा गुजरा होगा, पता नहीं उसके हालात क्या होंगे, हमें क्या पता। हमारा तो दीन हमें सिखाता है कि पहले 70 अच्छे गुमान करो किसी के साथ बदगुमानी करने से पहले, और हदीस में आता है बाज गुमान गुना होते हैं, गुना यानी आप सोचते होंगे ना, अमल तो कुछ भी नहीं किया मैंने, कौन सा किसी को कुछ कहा है, दिल ही दिल में तो सोचते हैं किसी के बारे में, लेकिन बाज गुमान भी गुनाह है, तो ये दिल के गुनाह है, चीजों को खुद ही एज्यूम कर लेना, ये दिल का गुनाह है। अगर उसने सलाम का जवाब नहीं दिया, हो सकता है उसने सुना ना हो, ये भी तो हम सोच सकते हैं, और हो सकता है उसने जवाब दिया और मुझे ना सुना हो, तो इस तरह के एक्सक्यूजेस हम खुद बता सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, मगर क्या करें, शैतान जो हमारे साथ लगा हुआ है उसके साथ भी लगा हुआ है, हमारे दिलों में भी बुरे गुमान डालता है, उनके भी डालता है, दोनों तरफ शैतान ये चाहता है किसी तरह फूट पड़ जाए, एक दूसरे से बदजन हो जाए, बस बदजन हो गया तो फिर तो काम आसान हो गया ना, फिर खुद ही इंसान आगे से आगे कड़वी कसीली बातें, कत्ता ताल्लुकियां, गईबतें, बोतान, ये सब खुद ही शुरू कर देते हैं, लिहाजा इस दरवाजे को ना खोलें, यहां से शैतान दाखिल हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि इसका ये इलाज है कि दूसरे को एक्सक्यूजेस दे, इसी तरह इसका ये भी इलाज है कि ये सोचे मेरे अंदर इतने ऐब हैं यहाँ, तो दूसरे में भी ऐब है, उसका तो एक ऐब मुझे पता चला मैं इतनी बदगुमान हो गई, तो मेरे तो अपने इतने ऐब हैं जिनका मुझे पता है, फिर भी मैं खुद को सबसे अच्छा समझती हूँ। तीसरा इसका इलाज ये कि उसके बारे में दुआ करें कि अल्लाह इससे ये ऐब दूर कर दे, या उसके लिए और खैर और भलाई की दुआएं करें, उससे शैतान गुस्से में आएगा और दोबारा आपके दिल में ख्यालात नहीं डालेगा कि जब भी मैं इसके दिल में बदगुमानी डालता हूँ ये उसके लिए दुआ करने शुरू कर देती है। बाज गुमान ऐसे होते हैं जिनके बाद इंसान तजस्सुस करने लगता है, मतलब किसी को कहीं खड़े देख लिया, दिल में बुरा गुमान आ गया, ये फलां के घर क्या कर रही है, जरूर वहां रिश्ता लेने गई होगी, अब आपको तो तजस्सुस हो गया, देखो तो सही ये फलां फलां जगह पे क्यों थी, उनके घर से क्यों निकल रही थी, वो तो घर पे है नहीं आज, तो ये क्या कर रही थी, अब तहकीक में लग गए, खाम खाला यानी बातों में पड़ गए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के इस्लाम का हुसन ये है, अगर आप ब्यूटीफुल इस्लाम चाहते हैं ना तो ला यानी बातें छोड़ दें जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, हमें नहीं जरूरत कि हम लोगों की जिंदगियों में झांके। बाज लोग बेटियों की माँ को किसी के घर ज्यादा आते जाते देख लें तो गुमान कर बैठते हैं, हाँ जरूर अपने उनके लड़कों के साथ इन्होंने अपनी बच्चियों का रिश्ता करना होगा इसलिए वहां जाती हैं, ये कितनी बुरी बात है। इसके बाद वो सिर्फ गुमान नहीं होता, उसके बाद ऐसे हम लोगों में वो बातें फैलाते हैं जैसे कि हमारी बात सबसे सच्ची और वसूख वाली है, तो गुमान करने से बचें, और भी बेशुमार गुमान है, मैं आपको एग्जांपल्स देने लगूँ तो पूरा टाइम इसी में गुजर जाएगा, ये सोच के बचें कि ये गुनाह है, और ये सोच के बचें कि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया इन समा वल बसरा वल फुआद कुल्लू उलाइक काना अनहु मसूला, ये जो समात है बसारत है हमें पता है इसका हिसाब होना, क्या सुनते हैं क्या देखते हैं इसकी अल्लाह ने पूछ करनी है, लेकिन क्या आपको पता है फुआद का भी हिसाब होगा, दिल का, इसका भी हिसाब होगा, क्या फिक्रें थी इसके अंदर, क्या सोचें थी। इन तुबदू माफी अनफुसिकुम और तुखफू युहासिबकुम बिही अल्लाह, तुम छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह हिसाब लेगा इसका। तो क़यामत के दिन जहाँ बाकी आज़ा का हिसाब है, हमें बताना पड़ेगा कहाँ चल के गए, क्या देखा, क्या सुना, क्या बोला। हम सोचते हैं कि बस दिल की बातें थी तो वो जुबान पे तो नहीं आई, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दिल में आपके एकदम ख्याल आ जाए तो हाँ, उसके ऊपर पकड़ नहीं है। कोई ऐसा एकदम वसवसा आ जाता है, इंसान उसको झटक देता है, उस पर पकड़ नहीं है। मगर दिल में ख्यालात को लाना और फिर उसको सोचते रहना और आगे से आगे सोचना उसका, तो इसके ऊपर तो पूछ होगी। उसके ऊपर तफक्कुर करना, गहरी सोच विचार में जाना, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। उसके ऊपर अल्लाह ताला सवाल करेगा और अल्लाह ताला के सामने ये दिल लेके जाएंगे जो बदगुमानियों से भरा हो। फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, देखो फलां तो ऐसी ही है, फलां कितनी बुरी है। इतने गंदे दिल को अल्लाह की मोहब्बत से कैसे भरा जा सकता है। बाज लोगों की आदत ही होती है बदगुमानी, जो मिलता है उससे बदगुमान हो जाते हैं। ऐसे दिल भी क्या दिल होंगे। तो दिल को साफ करना है तो गुमान अच्छे रखना सीखें। बुरा गुमान आए तो फौरन झटक दें, क्योंकि ये यहां तक नहीं रहता, फिर आगे ये कीमना बन जाता है। बदगुमानियां कता ताल्लुक तक पहुंच जाती है, और एक मुसलमान दूसरे से 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुक करता है, जो उनमें पहले मर गया जहन्नुम में जाएगा, यह हदीस से पता चलता है। और उनमें बेहतर वो है जो सुलह के लिए पहल करे, ये हदीस में आता है। यह सब बातों को इतना बढ़ने ही ना दे, क्योंकि ये जब बदगुमानी होती है तो ये चिंगारी की तरह फिर ये फैलती है। दिल साफ कर लें, बातचीत शुरू कर लें, बातों को क्लियर कर लें। बैठे बैठे घर में अपने बदगुमानियां पालते ना जाएं। और जब बातचीत तर्क हो जाती ना, कता ताल्लुक हो जाता है, तो शैतान और खुश होता है और ज्यादा बदगुमानी डालता है। और अगर ये बातें आप में से किसी को समझ आ रही हैं, जिसके साथ कभी ऐसा हुआ हुआ है, तो रमज़ान बेस्ट टाइम है इन चीज़ों को मेंड करने का। शैतान बंद है आपकी तरफ भी और दूसरी तरफ भी, तो आसानी हो जाएगी ताल्लुकात बहाल करने में। तो जो बदगुमानियां दिल में थीं उनको एक तरफ कर लें, दिल को बड़ा करें, फोन उठाएं, फोन करके बात को क्लियर कर लें। और अगर वो फोन ना उठाएं तो तब एक और बदगुमानी ना पाल लें कि पता नहीं, देखा नहीं ना उठाया फोन मेरा, हो सकता है दूसरा बिजी हो। आप वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। जानते हैं मीजान में सबसे ज्यादा भारी अमल क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्ने अखलाक से ज्यादा भारी कोई चीज नहीं रखी जाएगी मीजान में। ये अच्छा अखलाक है कि कोई पहल कर ले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन हुस्ने अखलाक वाला शख्स रोजेदार और नमाज पढ़ने वाले का दर्जा पा लेता है। यानी जितना कोई रोजा रख के और नमाजें पढ़ के दर्जे पाता है, हुस्ने अखलाक वाला मुफ्त में ये दर्जे पा लेता है। तो उसने अखलाक ये नहीं है कि मेरे से कोई अच्छा बोले तो मैं भी अच्छा बोल रही हूँ, वो हंस के बोलता तो मैं भी हंस के बोलती, मैं कितने अच्छे अखलाक वाली हूँ। उसने अखलाक ये है कि अब जहाँ पे बदगुमानी आ गई थी, उस बदगुमानी को पीछे करें, अपने ताल्लुकात को बहाल करें। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए इस पे। अच्छा, कोशिश कीजिए कि दिन में बावजू रहें। बावजू रहने से इंसान ना जब जिस्मानी तौर पे भी पाक साफ रहता है, तो एक उसके अंदर स्पिरिचुअली भी उसको पाकी महसूस होती है। इसलिए जितना आप, ये नहीं कि मेरा वजू है तो अब मैं क्यों वजू करूं, अगर आप कर लें तो आपको एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा उसका, वजू का अपना सवाब है। और वजू करने से आज़ा के गुनाह झड़ते हैं, जब हाथ धोते हैं हाथों के गुनाह झड़ते हैं, कुल्ली करते हैं कुल मुंह के गुनाह झड़ते हैं, नाक में पानी डालते हैं नाक के गुनाह झड़ रहे हैं, चेहरे पे पानी डालते, चेहरे के गुनाह झड़ते हैं। तो ये सोच के वुजू करते रहें कि मैंने अपने गुनाह झाड़ लें। आज आपको एक और अहम अमल बताना चाहती हूँ। ये सही हदीस है, अल्बानी ने इसको सही करार दिया। जिसने ईशा की नमाज के बाद 4 रकत अदा की तो वो लैलतुल कदर में इन्हीं जैसी 4 रकतों के बराबर हो जाएंगी। यानी ये अमल ऐसा है कि जो इसको करेगा हर रात लैलतुल कदर के बराबर सवाब मिल सकता है। यानी जो लैलतुल कदर में नफल पढ़ने का सवाब होगा वो इससे मिल सकता है। तो दूसरी हदीस में आता है जिसने ईशा के बाद 1 सलाम के साथ 4 रकत अदा की। 1 सलाम के साथ मतलब क्या कि दो दो करके नहीं पढ़ी, 4 रकत एक साथ ही पढ़ी, तो वो लैलतुल कदर में इन्हीं जैसी रकतों के बराबर हो जाएंगे। तो लिहाजा जो आपकी क़यामुल लैल है वो तो अलग है, जिसको हम तरावी कहते हैं वो तो अलग है, और ये अमल अलग है कि आप 4 रकतें 1 सलाम के साथ पढ़ें। जैसे बाज़ लोग 4 सुन्नतें जुहर की पढ़ते हैं, हालांकि वो एक साथ नहीं पढ़नी होती, वो दो दो करके पढ़नी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो करके पढ़ी है, जो जुहर की भी 4 सुन्नतें, 2 पढ़ के सलाम फेरा फिर 2 पढ़ी, ये वाली 1 सलाम के साथ पढ़नी है। ठीक है, ये सिर्फ रमजान का अमल नहीं है, जितने भी मैं आपको अमल बताती हूँ, अनलेस कि मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ रमजान का है, ये रमजान के अलावा भी, इसमें कहीं हदीस में ये नहीं है कि ये रमजान में। ठीक है, जो भी सारी बातें मैंने आपको बताई, मिसाल के तौर पे आपको मैंने इशराक की नमाज का बताया, फिर दुहा के नवाफिल का 4 का बताया कि वो आपके पूरे दिन के लिए काफी हो जाएंगे, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ले ली आपके उस दिन की, तो वो हर रोज के लिए। इसी तरह इशराक, अब आप सनराइज देख लें कि सनराइज का क्या टाइम है आपके इलाके में, हर जगह पे इंटरनेट पे आप चेक कर लें, कहीं चेक कर लें, सनराइज का जो टाइम है उसके बाद कम से कम 10 मिनट तो आप जरूर दें, कि वो उतनी देर में सूरज ऊपर जा रहा होता है, आपने कोई नफल नहीं पढ़ना। फिर जब 10 मिनट ऊपर हो जाए तो फिर आप पढ़िए। इसी तरह रात को सूरह मुल्क जरूर पढ़ के सोए, ये उसका क्या फायदा होगा। हदीस में आता है कुरान पाक में एक सूरत है जिसकी 30 आयात है, और ये अपने पढ़ने वाले की शिफात करेगी हत्ता के उसकी बख्शिश हो जाए, यानी इतनी अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगी उसकी कि उसको बख्शवा के छोड़ेगी। और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है, हमारे तो माँ बाप भी हमारे लिए नहीं खड़े होंगे कि अल्लाह इनको बख्श दे। तो ये वो सूरत है जो बख्शवाने के लिए लोगों के मरने के बाद पीछे उनके सूरह मुल्क पढ़ रहे होते, रात के वक्त खुद पढ़नी है। और जो अमल जिस टाइम पे बताया गया ना वो उस वक्त ही पढ़ना है, मसलन रात को बताया गया तो रात को ही पढ़ के सोना है, ये नहीं कि आप सुबह में पढ़ रहे हैं। जो जिसका टाइमिंग है ना, जैसे सूरह कहफ है आपको जुमे के दिन ही पढ़नी है, अब आप सैटरडे को अगर पढ़ रहे हैं तो वो उसका वो फजीलत नहीं है, वो उसकी बात नहीं होगी। फिर ये अजाब कबर से निजात देने वाली सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो इसको अलमानिया मानिया कहा करते थे, यानी अजाब से बचाने वाली। तो लोग दूसरे सहारे ढूंढते हैं, अब उसको राजी कर लें, उसको खुश कर लें, ये पता नहीं हमें वहां पे कितना काम आएगा, तो खुद नहीं पढ़ते कि हम खुद अपने लिए इंतजाम करें, किसी और ने काम नहीं आना, आप इन सूरतों को अपने साथ लेकर चाहिए, ये है काम आने वाली। ठीक है, अच्छा आप में से कौन कौन ये चाहता है कि क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत में दाखिल करा दें, कौन कौन ये चाहता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कहे कि नहीं मुझे नहीं इसकी ज़रूरत। कितनी बड़ी खुशनसीबी अगर ऐसा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका बता दिया खुद ही कि अगर ये जिक्र हर रोज करोगे तो जो ये करेगा मैं इस बात का जामिन हूं, मैं जमानत देता हूं कि उसका हाथ पकड़ के रखूंगा यहां तक कि उसको जन्नत में पहुंचा दूं। अल्लाहु अकबर, तो इस जिक्र को कभी छोड़ सकते हैं फिर हम? और कौन नहीं कर सकता ये जिक्र, मुझे बताएं? बीमार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जो मैं आपको जिक्र बताऊंगी इतना मुख्तसिर सा है, कोई ये नहीं कह सकता आए मेरी तो जुबान ही नहीं हिलती। जो नापाक हैं औरतें वो तो सारा कुछ ही छोड़ के बैठ जाती हैं, ये जिक्र तो वो भी कर सकती हैं। तो 3 दफा फजर की नमाज के बाद और 3 दफा असर की नमाज के बाद, यानी सुबह शाम आपने ये 3 दफा कहना। अब जो आपको डॉक्टर भी बताता है कि ये गोली आपने सुबह खानी है, ये इतनी शाम को खानी है, उसके मुताबिक भी खाते ना, अपने तौर पे तो नहीं सेट कर लेते। तो जो बताया जाता है उस क्वांटिटी में और उस टाइम पे ही पढ़ना है। तो जिक्र क्या है, रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन नबिया, मैं राजी हो गई अल्लाह के रब होने पे कि वो मेरा रब है, मैं इस बात से राजी हूं, और इस्लाम के दीन होने पे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी होने पे। ठीक है, मैंने आपको काफी सारे जिक्र बताए हैं, पिछलों को भूल नहीं जाना। जो मैंने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू वला बताया था ना जिक्र, 100 टाइम्स आपने करना, तो 100 दफा मैंने आपको कहा था दिन में, आप किसी टाइम पे भी चलते फिरते आपने बस उसको दिन में मुकम्मल करना। जरूरी नहीं कि आप तस्बीह लेके बैठेंगे या आपने फजर के बाद ही 100 टाइम्स करना, हो सकता है इतना टाइम ना हो, क्योंकि हमने फजर के बाद कुरान पाक जरूर पढ़ना है, चाहे एक सफाई क्यों ना पढ़े, इसलिए कि फजर का जो कुरान है वो मशहूर है, फरिश्ते उसको देखते हैं। क्या फरिश्ते जाके फिर गवाही देते हैं, तो वो इस वक्त के कुरान को स्पेशली अहमियत है। आप दिन में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फजर के बाद जरूर पढ़िए, यानी नमाज के बाद। अव्वल तो नमाज में ही पढ़ें, लेकिन इतना हमें चूंकि हिफ्ज नहीं होता तो नमाज के बाद पढ़ लीजिए, यानी इशराक तक आपने, इशराक नहीं यानी सनराइज तक आपने पढ़ना है इसको। सनराइज के ऊपर आपको पता है कि नमाज कजा हो जाती है फिर फजर की। तो ये जो मैंने आपको अमल बताया था ना, ला इलाहा इल्ला वहदहू ला शरीका वाला, ये अमल इतना जबरदस्त है, ये 100 दफा पढ़ना कि कयामत के दिन इसे बेहतर किसी और का कोई अमल नहीं होगा, सिवाय जो इससे ज्यादा ये पढ़ ले तो उसका होगा। तो देखें कितनी बड़ा बड़ा कलमा है ये, कि इतना ये बड़ा अमल है कि कोई कयामत के दिन इससे बढ़ के कोई ला ही नहीं सकता, सिवाय उसके जिसने ये पढ़ लिया। और आज की दुआ जो है ये वो दुआ है जो कि मैं पर्सनली मैं जरूर मांगती हूँ, और वजह ये है कि इसमें सारी खैर और भलाई, यानी मुझे फिर ये होता है कि अच्छा अगर दुआओं में से कोई दुआ रह गई है खैर की या भलाई की, मुझे भूल गई है या वक्त नहीं है इतनी दुआएं मांगने का, तो जब मैंने ये दुआ मांग ली तो मैं मुझे हर एक भी भलाई मिल गई। इसी तरह जब मैंने इस दुआ को मांग लिया तो हर शर से पनाह मांग ली। अब मुझे कई शर तो पता भी नहीं है, वो हिडन है, मुझे उनका अंदाजा ही नहीं है। अल्लाह माफ करे कौन सा शर हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें क्या पता होता है, या कुछ सालों में आने वाला है, या आखरत में कोई शर पहुंचने वाला है। तो दुनिया के शर हो या आखरत के शर हो, दुनिया में भी जो शर करीब है या जो शर दूर है अभी कुछ सालों बाद है, उन सब से अल्लाह की पनाह में आ गए। तो इतनी जामे ये दुआ है ना कि हर फितने हर शर हर बुरी चीज से आप अल्लाह ताला के पास पनाह ले लेते हैं और सवाल करते हैं हर भलाई का, जिनका कई भलाई हमें पता ही नहीं, ये भी मांगनी है। इंसान तो इतना कमजोर है ना, हमें याद भी नहीं रहता वैसे तो, लेकिन या पता भी हो तो तब भी कई दफा मांगने का ही नहीं पता होता कि ये भी मांगना चाहिए। तो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, बहुत आसान दुआ है अगर आप इसको याद कर लें, क्योंकि हमने सिर्फ रमजान में थोड़ी मांगनी है, हम तो दुआएं मांगते ही रहेंगे ना। मिनल खैरी कुल्ली, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ खैर का, सारी की सारी सारी खैर का सवाल करती हूँ, आजिली ही व आजिली, आजिली यानी जल्दी मिलने वाली और आजिली देर से मिलने वाले, यानी जो दुनिया की में भी खैर है वो जल्दी मिलने वाली, और जो आखरत की खैर है वो बाद में मिलने वाली। अल्लाह दुनिया और आखरत की भलाई आपने मांगी, खैर मांगी। फिर देखें जो बात अहम एक और है, मा अलिम तु मिन हूँ आलम, अल्लाह जिसको मैं जानती और जिसको मैं जानती नहीं। अब कितनी सारी खैर है, हमें कहाँ अंदाजा रहता है कि ये यानी जानते भी नहीं हम, ये भी कोई खैर है जिसको मुझे मांगना चाहिए। वाऊज़ु बिका मिन शर्री कुल्ली, और मैं तेरी पनाह मांगती हूँ सारे शर से, आजिली व आजिली, जल्दी मिलने वाले और देर से मिलने वाले। मा आलिम तुम इन हूँ व मा आलम आलम, जिसको मैं जानती हूँ और जिसको मैं नहीं जानती। कितनी जबरदस्त दुआ है जो हमें कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए। अब जितनी हमारी दुआएं हैं वो सब इसके अंदर आ गई, क्योंकि जाहिर है या तो हम खैर मांग रहे होते हैं अल्लाह से, या हम किसी शर से बचाओ के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो ये दुआ सब इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, सब चीजों को इसमें अपने अंदर शामिल कर लेती है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश कर दे। दुआ जो है वो भी इबादत है, बल्कि इसको मुखल इबादा कहा गया है, इबादत की भी यानी उस पर जिस्ट है। तो दुआ को मामूली ना समझिएगा, दुआएं मांगते रहिए। और अगर दुआ कोई समझ ही ना आए कि क्या मांगनी है, हम तो इतने कमज़ोर हैं, हमें ये भी नहीं पता होता हमने मांगना क्या, तो कम अज़ कम मसनून दुआओं की किताब खोल के तो उसमें एक दफ़ा पढ़ लिया करें, ये तर्जुमे के साथ के क्या चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, तो हमें मांगनी है वो चीज़ें। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।